শিখর থা দীর্ঘ স্বামীটাকে আমি চাই, বিচার জগত মে উৎপত্তি কাজ ভাব সবসে নিকৃষ্ট কোটি কাজ, কিন্তু শাস্ত্র মে লঘুত্ব আর ব্যয়ত্ব কাজ বর্ণন হ্যাঁ উসমে দোষ ইত্যাদি কাজ বিচার কিয়া গিয়ে হো প্রাকৃত নায়ক আর নায়িকা কে প্রাকৃত ভূমি কে উপর বিচার ইস জগৎ মে প্রাকৃত নায়ক আর নায়িকা কে সম্বন্ধ মে জো আর লোগো নে বর্ণন কিয়া হ্যাঁ উসমে হি ইসকা দোষ দেখা যায়, যাহা তক কৃষ্ণ স্বয়ং হি সর্বস্ব হ্যাঁ অপ্রাকৃত হ্যাঁ সচিদানন্দ উনকি যা সত্যিয়া রাধা ইত্যাদি ও ভী প্রকৃতি সে অতীত হ্যাঁ পর কোই ভী চিজ গোসাবাহ নেই হো সকতা কোই ভী চিজ ওয়া পর দোষ অব ত্রুটি ওয়া পর সাধকো মে ভি উচ্চ কোটি কে হাতে যদি দোষ সব নেই রাখে তো মহাকাল এ সব দোষ কত হ্যাঁ তো কৃষ্ণ স্বয়ং পতি যা পতি যা পর নায়িকায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণ কে সমান রূপ আর কলা স্বরূপ উনকি হ্যাঁ সচিদানন্দ वहां पर प्राकृत लोग अपने विचारों को वहां पर लगाते हैं, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी भक्त साधक अपने विचारों से मुक्त महापुरुषों का या अपने से उन्नत विचार वाले जो साधु हैं उन पर वो कसौटी न कसे क्या हुआ वैष्णव लोग क्या कर रहे हैं उन्नत वाले हैं और हम हैं निम्न कोटि के अधिकार में, हम सब समय निम्न अधिकार के अनुसार में उन पर विचार करेंगे तो वो सब भूल हो जाए। कृष्ण ने कहा जब मैं कभी खाता नहीं, मैं कभी स्त्रियों को देखता नहीं और हम देखते हैं कि वो स्त्रियों को सब समय देखते थे राज किया किया तो कृष्ण की बात सूच है हम ये देखें भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी झूठ नहीं बोलते, किंतु कृष्ण को हम झूठ बोलते हुए देखते हैं क्योंकि हम हमारी जैसी धारणा है झूठ का सबको उसी रूप में विचार करते हैं। जब युधिष्ठिर और कर्ण दुशासन दुर्योधन और ऐसे कलवा लेते जरासंध ये कृष्ण को नहीं समझते, ये भी कम विद्वान नहीं थे, कभी कृष्ण को नहीं समझ सके। मिट्टी खाई और कृष्ण ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, भगवान झूठ बोल दिए। अर्जुन को उन्होंने कहा मैंने सबको मार दिया है, तुम निमित्त परमात्मा भाव शब्द साक्षी। और ये कौन मारा गया?
अस्वस्थामा
हता, तुम ये बोलो। और वो मार नहीं गया, उसके पिता को मरवाने के उद्देश्य से, दोनों को मरवाने के उद्देश्य से ऐसा षड्यंत्र किया। हम तो देखेंगे अपने विचार से जो वो कृष्ण झूठ बोल रहा है, यदि कहोगे नहीं वो सत्य, तो हम अपने विचार से उनको देखेंगे ये झूठ बोल रहे हैं और हम लोगों से कहला रहे हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं जोर जबरदस्त, क्योंकि हमारा आधार ही वही तक है। साधन करने का बल नहीं, अप्राकृत प्राकृत झूठ सत्य अभी विचार करने का हमारा नहीं। ऐसे ही बुद्धि यदि हम अपने से उन्नत वाले किसी वैष्णव के प्रति हटाते हैं लगाते हैं तो ऐसा ही होता है। हम देखते हैं ठीक अपने देश में, किंतु हम कहते हैं इसे ऐसा है, ये झूठ बोल रहे, ये ठीक नहीं चल रहा, किंतु वो ठीक चल रहा। इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण भक्त जनस्य भक्तजनों का ये मत देखो जो हमसे उन्नत अधिकार के हैं। यदि प्राकृत भाव देखा, जैसे गंगा जल में कभी भी प्राकृत भाव नहीं होता है, और हम उसमें कीचड़ और फेन फेन देखें जो पवित्र है, तो हम क्या वो झूठ देख रहे हैं? हमने देखा कि वो आदमी मर गया और वो कहेंगे मरा नहीं, तो कौन सा ठीक है? हम अपने विचार से देखेंगे वो मर गया और वो कहेंगे मरा नहीं, नारद ने कहा कि मरा नहीं, तो सत्य तो मरा नहीं। जीवात्मा कभी न मरती है न कभी जन्मती है, ये बात ठीक है, किंतु समझ में आए तब तो। इसलिए इन सब चीजों को विचार करने के लिए, भजन करने के लिए पहले उस प्लेटफॉर्म में आएगा तब फिर समझे, अन्यथा समझ में नहीं। अभी ये बतला रहे हैं ठीक से समझ में नहीं आया ये बात ठीक। तभी एक प्रसंग आया, हम उसको कह रहे हैं, हमने भी समझ लिया है ऐसी बात नहीं, तभी हम पढ़ रहे हैं। यदि किसी जन्म में ऐसा सौभाग्य होगा भजन करने का, तो उस प्लेटफॉर्म में आएंगे, या उसके लिए थोड़ा सा लोग भी उत्पन्न हो गया तो समझे निजी हम लोगों का अनुशीलन दिवसा होगा। बस इसी जहां अभी वैदिक भक्ति में ही रुचि नहीं आई, और कहां ये राजानुगा का एकदम सिर्ण और था, तभी कुछ अनुशीलन जब चल रहा है तब थोड़ा सा चले। इसलिए शास्त्रों में जो औपपति और इस सब जो विचार किए गए हैं उपपति पति, इसके संबंध में केवल लघुत्व जो दोष दिखलाया गया है वो केवल प्राकृत नायिका और नायक के संबंध में है। चैतन्य महाप्रभु किसी स्त्री का नाम नहीं लेते, कभी किसी का दर्शन नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, ऐसा लिखा। यहां तक कि छोटे हरिदास को उन्होंने त्याग कर, किस स्थिति में? महाप्रभु का शरीर प्राकृत था या अप्राकृत? अप्राकृत था। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए वैसा किया, नहीं तो दिन रात तो इस भीतर में और बाहर में तो उनका स्त्री ही भाव, आराधा जी का भाव लेकर के आए हैं, दिन रात क्या करते हैं स्वयं उसी का ही चिंतन करते हैं। इसका उनकी कोई चिंता नहीं, उसी को आस्वादन करने के लिए है और उसी चीज को देने के लिए है। जब कोई बात भी करते हैं तो उनके आप छोड़ करके कोई बात करेंगे या स्मरण करेंगे उनको छोड़ करके करेंगे? नहीं करें, तो भी शिक्षा के लिए वैसा करते हैं। इसलिए जितना दोष है ये प्राय प्राकृत नायक और नायिका से संबंध नहीं है। माँ प्रभु जी प्रसाद पाने जा रहे हैं, किसी के घर में उनका प्रसाद है। चावल कहां से आया? सिक्की मेथी के घर से आया, उसकी बहन के घर से,
माधवी देवी।
माधवी माधवी देवी 84 वर्ष की है,
84,
और महाप्रभु के भक्तों में प्रधान है, 3.5 में से वो एक। वहां पर लाना दोष नहीं है, किंतु उसमें जो दोष दृष्टि देख रहे हैं उन लोगों को शासन करने के लिए, शिक्षा के लिए ऐसी बात है। मां ऐसे लोग ऐसा काम न करें, वहां पर दोष है। इसलिए श्रद्धा सहित यदि इस विषय को अनुशीलन यदि किया जाए तो वो व्यक्ति अधिकारी हो सकता है, सभी अधिकारी नहीं है। जब शास्त्रों में इसी तरह से विचार किया, किंतु मधुरस निर्यास आस्वादन के लिए जिनका अवतार है चैतन्य महाप्रभु जी, वो चैतन्य महाप्रभु जिस भाव का आस्वादन करना चाहते हैं उसमें दोष। लक्ष्मी जी और गोपियों की बात चल रही थी, चैतन्य चरितामृत में
रथ प्रसंग
सुभाष पंडित जी और स्वरूप दामोदर जी बैठे, सुभाष पंडित जी बगल बजाते हुए और खूब हंस करके लक्ष्मी की बहुत प्रशंसा कर, आज उन्होंने गोपियों को पीट करके दुरुस्त कर दिया और उनको पकड़ करके राधा जी के लक्ष्मी जी के चरणों में
गिरा दिया।
बड़े आनंदित स्वरूप दामोदर जी भी बड़े आज आनंदित हो रहे हैं गोपियों का उपकर्ष देखकर, और महाप्रभु जी उनसे पूछ रहे हैं ये लक्ष्मी पति प्रता है, किंतु होने पर भी ये राक्षसस्थली को दर्शन करने की इनकी क्यों अभिलाषा कर रही थी? कैसे उनका पाति पत्र धर्म नष्ट होगा कि नहीं होगा? केवल 1-2-4 आदमी कहेंगे ये नहीं और बाकी सब कहेंगे जो होता, क्योंकि उसी अधिकार में। इसलिए सुभाष जी भी उसी अधिकार में अभी बदल, अधिकार तो उनका उन्नत है किंतु अभी दिखला रहे हैं शिक्षा देने के लिए। स्वरूप दामोदर जी हैं राधा जी के पक्ष में, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, तत्वता दोनों एक, कृष्ण और श्री
कृष्ण स्वरूप
रस के 12 उत्कृष्ट
कृष्ण रूप में सरस स्थिति,
रस की ऐसी ही स्थिति है जिसमें मधुर रस सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई दोष की बात नहीं। उन्होंने कहा गोपियां कृष्ण मधुर बंशी बजाए और सब गोपियां अपने पत्नियों को छोड़ करके चले और कृष्ण ने सबको विदा कर रहे हैं, कृष्ण सबको अब घर में लौट या राक्षसस्थली रास हुआ और सब गोपियां एकत्रित, उसमें कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते और पीछे से राधा जी के साथ में प्रकट होते। सब दामोदर जी ने कहा देखो सब गोपियों को छोड़कर के राधा जी के साथ में आए, इसलिए राधा जी सबसे श्रेष्ठ। महाप्रभु जी ने कहा ये नहीं, अभी बात सिद्ध नहीं, वो तो चोरी से गए, हो सकता है कि किसी को अधिक प्यार कर रहे हो चंद्रावली और ललिता विशाखा, तो इसे चोरी करके तब उनसे जाकर के मिले हैं, इसलिए सशक्त स्थापन नहीं, उसमें सभी हो सकती है कृष्ण की तैयारी। यदि सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में यदि सब गोपियों को छोड़कर के राधा जी के साथ में जाए और उनकी सेवा करें तब हम समझेंगे कि राधा जी उनकी सबसे अधिक है। तब उन्होंने बासंती रास्ता बन गया और उसने दिखलाया बासंती का राज हो रहा था गोवर्धन में और वहां पर राधा जी ने थोड़ा सा मांग किया और वहां पर सब गोपियों के साथ समक्ष सामने राधा जी को ले लिया कब और वहां से अंतर ध्यान हो जाता सब गोपियों को छोड़कर के उनके साथ
राधा माधा या हृदय तत्व सुंदरी।
इसलिए ऐसा प्रतीत होता है प्रमाणित होता है कि राधा जी सबसे अधिक अब वो सब पतियों को तो वो छोड़ करके आई और इधर में सब गोपियों को भी छोड़ करके कृष्ण उनको लेकर के गए। यहाँ पर उपपति का भाव यहाँ पर दिख रहा है और उसमें भी राधा जी का भाव सर्वोत्तम ये दिख रहा है। यहाँ पर कृष्ण ही स्वयं परब्रह्म है सच्चिदानंद घने हैं वो उनके मूल उद्गम भी हैं उनकी वो शक्ति भी है और वही उनसे उसी रूप में स्वकीय भाव में भी परकीय भाव में भी कभी बंधु बन करके सखा बन करके कभी पिता माता इत्यादि पुत्र को करके सभी रसों का आस्वादन करते तो एक यही भाव क्यों छूट जाए तो अपूर्ण हो जाएगा आया समझ में कि नहीं। यदि उत्पत्ति का भाव छूट जाता तो उसमें अपूर्ण हो जाता वो अर्थ इसलिए वो भी क्यों न पूर्ण हो। इसलिए संपूर्ण जो कुछ भाव है कोई भी जो चिंता कर सकता है उस चिंता के अतिरिक्त भी जो कुछ है सब कृष्ण में और तो सब पूर्ण है। इस संबंध में अधिकार के अनुरूप जैसे हम लोगों का अधिकार उस समय में गोस्वामी जी ये बतला रहे हैं साधारण इस प्राकृत उपपति का जो भाव है अरे छोड़ दो उनको हवा चाहिए अभी भी लागू नहीं हो सकता। कृष्ण किसी भी प्रकार से किसी का उपपति नहीं हो सकते वो तो स्त्रियों की बात क्या। कृष्ण जितने पुरुष हैं स्त्री हैं लड़के हैं लड़का हैं वृक्ष हैं लता हैं गुल्म हैं जहां तक जो प्राणी हैं सबके पति हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके कृष्ण पति नहीं। पति माने पालन पोषण करना और तो माने
प्राण कर
रक्षा करना तो सबके वो यथार्थ पुरुष में पति है यही भाव ठीक है। किसी के भी उपपति नहीं है। जैसे एक बार गुरु जी बतला रहे हैं द्रौपदी जी सभा में खड़ी हैं और क्षीर हरण हो रहा है कृष्ण कपड़े बन गए और उनके शरीर में लपट गए सारे शरीर और लोगों ने कहा जिसकी लज्जा की रह गई रक्षा हो गई। अच्छा सचमुच में उनकी लज्जा रही कि गई क्या हुआ दूसरों की दृष्टि से तो उनकी लज्जा बच गई उनके अंग नहीं दिखे किंतु कृष्ण तो उनके अंगों में
लिपट
ऊपर से नीचे तक तो उनका सत्यत्व रहा कहां। यदि कृष्ण को पर पुरुष मान लिया जाए तो नहीं कृष्ण तो उनके अंतर हैं बाहर हैं भीतर हैं कोई देखे न देखे
क्या एक पिता से भी कृष्ण कम हो गए? जो अपनी बच्ची को छोटी सी है उसने टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया, वो उसको धो देते हैं सब अंगों को, तो कृष्ण उससे भी कम हो गए? इसलिए कृष्ण सबके ही पति हैं, ऐसा ही ये विश्वनाथ ये गोस्वामी भी कह रहे, कोई माने और न माने। इसी दृष्टि से वो श्लोक बतलाया गया है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव
सखा
तमेव बंधुश्च सखा तमेव
तमेव विद्या द्विजं
कविनं तमेव
तमेव सर्वं मम देव देव।
इसीलिए कहा, जहाँ कहीं भी श्लोक की वंदना की गई है, साधारण लोगों की दृष्टि के अनुसार में अधिकारियों को निर्णय करके, जिसका कोई बुद्धि विवेक नहीं है, उन सब लोगों के लिए ऐसे कहते हैं कृष्ण ही सदस्य, उनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कृष्ण में ये सब भाव पति और उपपति और ये सब मत आरोप करो, कृष्ण ही सब जीव मात्र के पति हैं। नित्य लीला में परकीय भाव नहीं होता, जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कृष्ण की दो लीला है, एक लीला है प्रकट और एक है अप्रकट। एक जगत में जितने दिनों के लिए वो प्रकट होती है, ब्रज में वो लीला केवल 3-4 वर्ष के लिए प्रकट हुई, बस इस जगत में। ब्रज में कितने दिन? 8 वर्ष से करीब करीब 10 वर्ष तक, बस 2 ही वर्ष तक। कृष्ण 10 वर्ष के बाद में यहाँ पर चले आते हैं, उस समय उनको कहा जाता है कि 11, 11.5, 12 वर्ष के वो हो गए, किंतु उसकी उम्र कृष्ण की जब आए तो 10 वर्ष। खाते पीते मक्खन और लड्डू खाते थे मिश्री, बहुत जल्दी थोड़ी उम्र में ही वो अधिक मोटे दिखते थे। कहते हैं कि प्रकट लीला में प्रक्रिया नहीं है, कौन कह रहा है, किसके लिए कर रहे हैं?
अनधिकारी लोगों के लिए,
छोटे छोटे अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, उनके लिए कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी पढ़ा रहे हैं। हम लोग भी उनका भी छात्र ही होने लायक नहीं, वहां पर तो कुछ छात्र थे जिसको बतला रहे हैं, करें तबे वहां पर जो माया के द्वारा रस का पोषण करने के लिए प्रकट लीला में उपपत्ति का भाव प्रकृति मात्र होता है। प्रकृति माने दिखता है किंतु है नहीं, जगत में दिखा, बहेलिए ने बाण मारा और कृष्ण के पैरों में लगा और वहां से रक्त स्राव हुआ और कृष्ण उसी से परलोक धाम को चले गए, शरीर को छोड़कर के गए और शरीर को जला दिया। लोग ऐसा कहते हैं, उस स्थान को ऐसा दिखलाया, किंतु ब्रह्मा और शंकर ने देखा कृष्ण उसी शरीर से ही तेजमय शरीर से अप्रकट धाम में वो पहुंच गए और लोग उनकी वंदना करने, देवताओं ने तो उनकी गति भी लक्ष्य नहीं की, ब्रह्मा और शंकर जैसे लोगों ने केवल देखा कृष्ण सशरीर ही यहां पर जा रहे हैं। और साधारण लोगों ने देखा क्या, पैर में उसका बाण लगा हुआ, वो शरीर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये कौन सा सत्य है कौन सा झूठ है, या दोनों सत्य है दोनों झूठ है, ना क्या है? हम लोगों के लिए वो पहला वाला जो था, जो बाण लगा
पड़ा हुआ
और वो दिखाई जो पड़ा वही सत्य है। हम लोग भी उस समय होते ना तो उसको देख करके ऐसा ही समझते, किंतु कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड को क्षण मात्र में भी प्रस्तुत करने वाले, निर्माण करने वाले कृष्ण के लिए एक अपने जैसा और शरीर निकाल करके और दिखला देना, ये कोई बड़ी भारी बात, कोई भी बात नहीं। उनकी जोग माया ने कंस को छका दिया ना, उसको पटका देवी को और वो अष्टभुजा होकर के ऊपर में चली, कही कही तुम्हारे मारने वाला नत्र जन्म ले लिया, तो वैसे ही योग माया के द्वारा वो जगत के साधारण लोगों को ठगते थे। उन्होंने देखा, अपने अधिकार के अनुसार में देखा और उन्होंने सत्य ही माना, किंतु वह बात थी एकदम संपूर्ण गलत। कृष्ण सशरीर ही वहां गए, बाण इत्यादि से उनका कोई भी संपर्क नहीं था, श्रीमद भागवत इत्यादि में नहीं लिखा गया। महाभारत में कहीं कहीं ऐसा ऐसा दिखलाया गया है, कहा नहीं गया, दिखलाता है, उसके कहने से ऐसा दिखता है, इसीलिए कहा गया है श्रीमद भागवतम पुराण अमलम पुराण। और सब में पुराण और अधिकारियों के अनुसार में ऐसा लिखा गया है कि धीरे धीरे समझ समझ करके धीरे 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 बढ़ेंगे और सत्संग में जब उनकी बुद्धि होगी तो वो इन चीजों को समझेंगे, अन्यथा नहीं समझेंगे। बहुत से लोगों को यह कुछ गलत धारणा लोगों की हो जाती है। गोलोक धाम में राधा जी में और तुलसी जी में परस्पर अभिसंपात हुआ, इसीलिए वो शंखचूड़ की स्त्री बन करके आए और कृष्ण वहां पर किस रूप में आए, और नहीं वो तो पीछे से हुआ, और सुबल आए शंखचूड़ होकर जलंधर। ये सब चीजें हैं हम जैसे मूर्ख लोगों को थोड़ा सा बतलाने के लिए, यथार्थ में ऐसा फैक्ट नहीं है। अपराधिक जगत में ये सब चीज कुछ नहीं है, किंतु हम लोगों की बुद्धि मोटी होने के कारण ऐसा समझा जाता है। इसलिए जीव गोस्वामी जी उनको वो बतला रहे हैं कि ये जो गोपियों के साथ में गोपियों का विवाह हुआ था ब्रज में, किसके साथ, उनके पतियों के साथ में, ये माया ने भ्रम उत्पन्न किया। यथार्थ में वो कोई शादी नहीं हुई उनकी, कृष्ण के साथ ही उनकी शादी है, या जो कुछ है उनकी स्वकीया है, वो माया प्रत्यायित भाव है। माया प्रत्यायित माने माया ने न होने पर भी एक ऐसा भाव दिखला करके और उनके मन में ऐसा अभिमान पैदा कर दिया। ब्रह्म मोहन में भी माइक लीला, यदि कहो जैसे भगवान की लीलाओं में माइक लीला आ जाती है तो क्यों नहीं आ जाती है। जी गोस्वामी जी कह रहे हैं ब्रह्म मोहन में माया ने मोहन कर दिया ना, किसको,
ब्रह्मा जी
लड़कों को, लड़कों को मोहित कर दिया, कृष्ण को भी आच्छादित कर दिया, और उन्होंने देखा जी हमारे सब सखाएं में जाने कहां चले गए, और कृष्ण मुग्ध हो करके देख रहे हैं तो ढूंढ रहे, मुख सचमुच में सूख गया, ऐसे हृदय कांपने लग गया, मुख मलिन हो गया, प्यास से सूख गया, उनका देखा जी अरे बछड़े तो बछड़े गए और इधर आया तो सखा लोग भी कहां चले गए, ये कैसे हुआ, माया ने ऐसा कर दिखाया। यथार्थ में न बछड़ों को कोई ले गया, न सखाओं को कोई ले गया, न कृष्ण को कोई मोह हुआ, ये माया के द्वारा ऐसा हुआ। इसलिए मध्वाचार्य ने इस प्रसंग को ही, ब्रह्मा मोहन गुरु है ना, इसलिए इस प्रसंग को कहा जाए ये प्रक्षिप्त है, ये है ही नहीं, दो अध्याय की तीन दो अध्याय बस, दो अध्याय को प्रक्षिप्त बतला दिया, किंतु हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी ने कहा नहीं ये ठीक है। क्यों ठीक है, कृष्ण जो कुछ भी संकल्प करते हैं वो सब संकल्प ठीक है, कोई भी गलत नहीं है,
सत्य संकल्प।
स अकामयत यह जगत हो गया, स ऐक्षत उसने इच्छा की और ये जगत हो गया, तो ये जगत झूठ नहीं है, सत्य संकल्प शक्ति के द्वारा ये प्रकटित हुआ है। उसी प्रकार से वो जो ब्रह्म मोहन की लीला है उसमें कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, शिक्षाएं हैं, ये कभी असत्य हो सकती है, असत्य नहीं, वो ठीक। दो माया, एक महामाया जोग माया, हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते, वहां पर एक ही माया काल लिखा हुआ है सब। किंतु ब्रह्मा जी को और साधारण लोगों को जो मोहित किया वो महामाया, और कृष्ण को जो मुग्ध किया वो जोग माया। ये माया तो दो है नहीं, उसके फंक्शन दो हैं। उसी तरह से यहां पर जीव गोस्वामी कह रहे हैं, असुर जैसे लोगों के लिए, विवेकहीन साधारण लोगों को उन्होंने माया के द्वारा मुग्ध होकर के वो दिखलाया क्या, ये इनका विवाह हो रहा है। किनका? गोपियों का विवाह हो रहा है। पति लोग भी समझ रहे हैं जी हमारा विवाह हो रहा है। हुआ क्या, असल गोपियां तो ठीक थी, वो सब विवाह स्थल में नहीं आई, उनकी प्रतिमूर्ति जोग माया ने कराया और करा करके उनका विवाह रचा। और जी गोस्वामी तो कह रहे हैं ये भी नहीं हुआ, जैसे नारद जी को वो कल परसों जी कथा कर रहा था, वो एक नगरी मिली, राजा मिले, सुंदर हो रहा था और उसमें हाथ देखा लड़की का, फिर विवाह करने के लिए उतावले हो गए। ये सब एकदम झूठ माया में कुछ हुआ ही नहीं और ऐसा दिखाई पड़ गया। अभी हमारा बंधन नहीं है, अभी जो हम लोग माया के बंधन में, गुरु जी कहते थे जो नहीं बंधन में कोई है ही नहीं, यही तो माया है, बंधन ही। और हम समझ रहे हैं कि बंधन, जीव यदि चेतन है और नित्य चेतन है तो माया उसको बांध करके उसकी क्रिया को लुप्त कर देगी, ये तो कभी संभव पर नहीं। तो जीव तो भगवान की सेवा कर रहा है, मुक्त पुरुष इसीलिए देखते हैं कि ये भगवान की सब सेवा कर रहा है। जीव कभी भी बद्ध नहीं होता, किंतु हम उसको उपलब्धि कर रहे हैं। ये क्या चीज है, यही माया मरीचिका है, नहीं हुआ तो भी ऐसा दिखता है, ये भी भगवान के एक लीला है, ये महामाया के द्वारा ये सब ऐसी लीलाओं को करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों का वहां पर उनके पास में कोई उत्तर नहीं, माने उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं, क्यों करते हैं वो ठीक करते हैं,
क्यों नहीं चलेगा,
इसलिए कहते हैं कि माया के द्वारा ऐसा हुआ। मान लिया, अब यहां पर कुछ प्रश्न उठता है उसका भी समाधान कर। अच्छा, गोपियों की प्रतिमूर्तियों से गोपों का विवाह हुआ, वो समझ रहे हैं कि मेरी स्त्री है ना, ये बात तो ठीक है, यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं। किंतु असल में जो गोपियां थी वो कम इनके घरों में आकर के वो समझती हैं कि हमारे ये पति हैं, और उन घरों से वो राश में जाती हैं। इसका उत्तर क्या होगा, आया कुछ समझ में कि नहीं आया? आया क्या कहा, क्या की बोल रहा हूं, उनको तो समझ चाहिए हमारा विवाह नहीं हुआ, ये तो सीधी सी बात, उनकी मूर्ति बना करके कोई और शादी करा दे और उनको मालूम नहीं जो मेरी शादी हुई, तो ऐसा कैसे हुआ? तो इसी के लिए कहते हैं कि वो योग माया के द्वारा उनमें भी ये अभिमान दे दिया गया, किंतु वो अभिमान दिया गया कुछ समय के लिए, केवल रस की सिद्धि के लिए ही उन्होंने दिया। अभी ये समझ में नहीं आएगा अधिक, तब इतना भी तुम लोग थोड़ा सा जान लो, भजन करते 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 करते, चिंतन करते करते, स्मरण के द्वारा, तब धीरे धीरे ये समझ में कुछ कुछ आएगा। जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा भेद एक आभास के रूप में समझे, हम लोगों के अंदर में ये प्रश्न ही नहीं आएगा, किंतु संसारिक लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा। जथा सिंगो ही मनमथो उद्भेद सदा गमन, ये कह रहे हैं सिंगो ही श्रृंगार रस, श्रृंगार माने क्या होता है, श्रृंगार श्रृंग से श्रृंगार, श्रृंग किसको कहते हैं? पर्वतों की चोटी का नाम जितने रस हैं ये पहाड़ हैं, और उनकी चोटी क्या है? ये मधुर रस, इसलिए इसको श्रृंगार कहते हैं। श्रृंग का भी श्रृंग है ये, इसलिए इसको। और श्रृंगार माने होता है सूची, सूची माने पवित्र, पवित्र माने इसको कहते हैं। साधारण चीज नहीं है। इसको जिनकी बुद्धि नहीं है, भजन नहीं है, जो साधु संग नहीं करते, समझने में अपारक। एक पति अपने स्त्री से को अपने घर में रहता है, एक तरह से रहता है। एक दिन हमने देखा जो यही मथुरा का ही दंपति, एक लड़का लड़की माने पति और पत्नी दोनों जा रहे हैं। लड़की बैग यहां पर झूला दिया, जैसे कॉलेज में जाते हैं लड़के ना, ठीक उस रूप में। मालूम नहीं कि पति पत्नी ने, किंतु हां प्रेमी प्रेम का जैसे मालूम पड़ रहा है। दोनों ने आकर के हमारे चरण छुए। अरे भाई, मैं तो तुम को पहचान ही नहीं सका, कहां जा रहा था? आगरा जा रहे हैं, किस लिए? तो एक काम से जा रहे। ठीक ऐसे ही वहां पर रस के निर्जास के लिए उन्नतम जोग माया ने ऐसा किया, इसीलिए यहां पर कर रहे हैं। ये जोग माया के प्रभाव से नहीं होने पर भी ये ऐसा हुआ नहीं, संगठित विवाह शादी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही जोग माया ने ये सब घटा दिया। तो वो जो प्रश्न किया ने, तो उनके हृदय में ऐसा क्यों हुआ? तो यही जोग माया का कारण। अघटन घटन पटियसी शक्ति है वो कृष्ण की, इसलिए किसी विशेष कारण से उनके हृदय में भी ये खर करके और भावना बना दिया, जो कि अपनी स्त्री में भाव नहीं होता, वो भावना के अनुसार में प्रेम की वृद्धि के लिए ऐसा। ये पहला उनका पॉइंट। दूसरा, अलंकार शास्त्रों में भी उपपत्ति की निंदा की जाती है, इसलिए हमारे ये अलंकार शास्त्र भक्ति स्वामी सिंधु इत्यादि में और दूसरे शास्त्रों में भी जब उपपत्ति की निंदा देखी जाती है, तो कृष्ण में उपपत्ति की भावना नहीं होनी चाहिए। ये जैसे भी है शब्द ही खराब है, इसलिए पति का भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण के प्रति गोपियों का पति का भाव नहीं, बल्कि पति का भाव ही था। दूसरी बात, कृष्ण ने स्वयं कहा था तुम अपने घरों में लौट जाओ। स्त्रियों के लिए पति लंगड़ा लूढ़ा और समस्त साधनों से हीन भी हो, जैसा भी हो, काला कलूठा जो कोई भी हो, पालन करने में भी असमर्थ हो, कोढ़ी इत्यादि भी हो, तभी स्त्रियों के लिए वो हातव्य नहीं है, अर्थात छोड़ने योग्य नहीं है। उनकी सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। ये दिखा यदि कृष्ण स्वयं अपने मुख से कर रहे हैं, तो उपपति होकर के उनकी कैसे सेवा ग्रहण कर सकते हैं? इसलिए ये कभी भी संभव नहीं। इसलिए उन्होंने कहा अस्वर्ग्यम और जसस्तरम च फल्गु कृष्णम भयावह युगप्सितम च सर्वत्र होपपत्तम कुलस्त्रिय। कुल स्त्रियों के लिए उपपति का भाव स्वर्ग से भ्रष्ट करा देने वाला, अत्यंत तुच्छ, अत्यंत भयानक फल देने वाला महापाप, और सर्वत्र अत्यंत निंदनीय है लोक में और परलोक में। तो भला कृष्ण इस ऐसे संबंध को क्यों ग्रहण कर सकते हैं गोपियों के लिए, इसलिए ये सब गोपियां कृष्ण की स्त्रियां थी, कृष्ण उनके स्वयं पति, इसलिए। और यदि कुछ देखा जाता है वो जोग माया के द्वारा नहीं होने पर भी उसकी कल्पना की गई, यथार्थ में उनके पति। और हम आगे कहीं आगे
नमो महादन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायके हे कृष्ण कर्णा सिंह दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांतम
भागवत में स्वकीय भाव की उद्दिष्ट क्योंकि कृष्ण ने स्वयं भी बताया अस्वर्ग्य अजसस
अजसस कदम
फुलगु कृष्ण युगल सर्वत्र ही उपकर्म उन स्त्रियों के लिए वो पति का भाव कहीं भी हो वो अस्वर्ग्य अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति नरक का द्वार और यशस्त और बड़ा भारी उसमें अपमान होता है, अपजस अपजस का कारण होता है। फलगु देखने में सुख किंतु दुख, इसको कहते हैं फल। आदमी समझता है प्रीति करता है वो पति के साथ, किंतु ऊपर से देखने पर भी प्रीति वहां दुख का कारण है। कृष्ण अत्यंत दुख को कितनी विघ्न बाधाओं को अपने सिर पर लेकर के करना पड़ता है, यहां तक कि उसमें प्राण भी जा सकता है। कहीं बंधु बांधवों ने कहीं घर वालों ने देख लिया तो उसे जान से खत्म कर दिया। और भयावहम इस लोक में तो ही है, उस लोक में भी बड़ा भयावह जुगुप्सितंच निंदनीय घृणित सर्वत्र सर्वत्र लोक परलोक में कहीं भी भागवत 10:29-26 में ये बतलाया गया, कृष्ण ने स्वयं भी कहा। दूसरी बात, भागवत के जो मूल श्रोता है, मुख्य श्रोता और वक्ता दोनों ने इसको खराब कहा, इसलिए कृष्ण में और गोपियों में कभी भी औपपत्ति का भाव संभव नहीं है। क्यों? परीक्षित जी ने कहा आप तथा जगुपति कृतमान वही युगम। अरे कृष्ण तो भगवान है, सर्वेश्वर है और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है आप्त काम है, उनकी कोई कामना बाकी नहीं, वो तो स्वयं परिपूर्ण है। आप्त काम और
आत्मा राम
और आत्मा आत्मा में रमण करने वाले, उनको तो दूसरे चीज की जरूरत नहीं अपने सुख के लिए। हम लोगों के लिए है मान लिया कि हम अकेले में निर्जन में एक दिन रहेंगे, दो दिन ना हो तो रहेंगे, तीन दिन भी रह जाएंगे, इससे अधिक नहीं रह सकते निर्जल। बिना बोले रहेंगे नहीं, होगा तो पेड़ों से बोलेंगे, पौधों से बोलेंगे, पशु पक्षियों से बोलेंगे, बोले या कोई नहीं रहेगा तो अपने आप स्वयं बोले, पागल हो गया। कृष्ण को दूसरी चीज का सहारा अपने आनंद के लिए लेने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं स्वयं में परिपूर्ण है सब विषय, इसलिए वो आत्मकाम, उनकी समस्त कामनाएं परिपूर्ण है, इसलिए उनको कोई जरूरत, हम लोग को आकांक्षा है किसी प्रकार की, उनको किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, इसलिए आत्मकाम व्यक्ति के लिए किसी दूसरे की सहारा लेकर के अपने आनंद उपभोग करना यह संभव पर नहीं, इसलिए कृष्ण गोपियों का सहारा लेकर के ही आनंद उपभोग करेंगे तब तो आपके काम रहे नहीं, इसलिए ऐसी बात नहीं। जदुपति वो तो जदुपति है ना, जदुपति क्या, इसलिए जदुपति है क्योंकि 16,000 तो महिषियां हैं किंतु किसी के वशीभूत नहीं, किसी के नहीं वशीभूत, उनकी कोई जरूरत नहीं है। रुक्मिणी को कैसे कर दिया है, थोड़े समय बस कर दिया जैसे तुम्हारी जान इच्छा में जा सकती, यदि कहो तो मैं खुद ही तुम्हें लेकर के रख कर बैठा करके और तुम जिसके यहाँ कहो मैं वहां पर पहुंचा, बस रुक्मिणी जी मुक्त हुई। सत्यभामा को कहा जिसे इसको बात कर दो,
दुष्ट सत्ताई
बस बात कर दो, और किसको बात किया, वो ऐसे आत्माराम होकर के जतुनों के पति होकर के भी धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले होकर के स्वयं आत्माराम होकर के स्वयं भगवान होकर के सचिदानंद घन होकर के भी कृतवान वही जुगोपसितम, क्यों उन्होंने ऐसा खराब काम किया, वो निंदनीय काम किया। इसलिए परीक्षित महाराज की दृष्टि में कृष्ण का वह कार्य गोपियों के साथ में नित्य रास और उनके साथ में एकांत में मिलन ये जुगोपसित है, निंदनीय, इसलिए कृष्ण ऐसा क्यों किया। कहो जैसे परीक्षित महाराज जो मरने बैठे हैं और भगवान की लीला कथा सुनने चाहते हैं तो उन्होंने जब ये प्रश्न किया तो उनके अंदर में जरूर भावना होगी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और सब लोगों ने ऐसा दिया है, उनके अंदर में ऐसी भावना नहीं थी, किंतु देखा जी वहां पर जो बैठे हुए हैं सभ्य लोग उसमें ज्ञानी हैं, कर्मी हैं और कम कम है, उसे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो उन लोगों के हृदय में ये भावना आ सकती है, अरे कृष्ण भगवान होकर के भी और ऐसा कर्म किया, जैसे कि अभी भी आर्य समाजी लोग बंकिम चंद्र जैसे साहित्यकार और सब लोग कृष्ण पर यह दोष लगा भागवत के कृष्ण, किसी कृष्ण ने नहीं सोचा जैसे क्यों किया। 10:33-28 अध्याय में ऐसा जब यह सुना, जब कृष्ण उनके साथ में रमण कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनके श्वेत बिंदु पूछ रहे हैं, अरे कृष्ण कामी बन गए, ऐसे उनकी धारणा हो सकती है, इसलिए परीक्षित महाराज ने सबके सामने ये प्रश्न कर दिया। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया,
उत्तम पुरस्कार,
उन्होंने कहा अरे ये तो मैं पहले बतला चुका हूं, तुम समझता नहीं, उनको झड़प दिया, अरे बोला जैसे अग्नि सब तरह की चीजें खा जाती है, गंदा मंदा पैखाना करती सब और पवित्र बनी रहती है, तो तेजियांशन न दोषाय, तेजी व्यक्तियों के लिए ये सब दोष, कृष्ण स्वयं परमेश्वर वो सब अग्नि को हट, जैसे अग्नि अच्छा बुरा सभी चीज को खा करके पवित्र बनी रहती है, इसी तरह से उनको और कोई विशेष उत्तर नहीं। इन वचनों के द्वारा औपपत्य का जो दोष निर्दित हुआ, दोष जो कहा गया है, कृष्ण भिन्न अपर नायक के संबंध में वो धरना चाहिए कौन का राजीव गोस्वामी, ये जो बातें हैं ये जी गोस्वामी कह रहे हैं, ये सब अभी जो कुछ कहेंगे उनकी युक्ति समझना, हमारी युक्ति मत समझना या दूसरे तो करेंगे से, ये सब जो कहा गया है यदि कृष्ण को छोड़कर के दूसरे के संबंध में बातें होती तो वो दोष था, किंतु कृष्ण के लिए दोष नहीं, क्यों, अरे अपनी स्त्री के साथ में वो जिस प्रकार का व्यवहार करे पति, चाहे वो पति की भांति करे या अपने पति की भांति करे, इसमें किसी को क्या लेना देना है, क्या लेना देना है, यदि कोई व्यक्ति एक दूसरी कोई स्त्री को भगा कर लेकर और कश्मीर की घाटी में जाता है, इधर उधर घूमता है, तो उसके लिए तो दोष है। और अपना पति ही उसको, अपनी पत्नी को विवाह के दूसरे दिन ही उसको लेकर के चला गया और वहां पर दर्शन कराया। जैसे कि वो कपिल देव जी के पिता
कर्दम ऋषि
देवभूति को लेकर के विवाह के बाद ही वो चले गए और भारतवर्ष के विश्व के जितने सुंदर रमणीय स्थान हुए उनको लेकर के उनसे दर्शन कराए, तो इनके लिए दोष नहीं है, वो तो अपना पति है। इसलिए कृष्ण सभी के, हमारे तुम्हारे विश्व के जितने भी प्राणी हैं, वृक्ष लता गुल्म पशु पक्षी मनुष्य स्त्री पुरुष सबके वो पति है, इसलिए कृष्ण के लिए दोष है, किंतु और दूसरों के प्रति होने से ये दोष होता है। कृष्ण के संबंध में ये सब दोषों की आशंका नहीं है, क्योंकि मधुरस विशेष का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने अपनी पत्नियों को ही इस रूप में बनाया, उनके भाव दिए और इनके अंदर में भी वो भाव कर दिया। एक कहानी शायद हमने कहीं कहा होगा, लौकिक कहानी। किसी समय एक लड़के की शादी हुई, किसी धार्मिक ग्रंथ में लड़के की शादी, लड़की बड़ी सुंदरी है, लड़का भी बड़ा सुंदर है। जब लड़की पति के घर में आई तब तक उसका किसी दूसरे से कुछ प्रेम हो गया, अब ये अपनी स्त्री को प्यार नहीं करे और स्त्री के साथ में न रहे और इधर उधर डूबता रहे, तो स्त्री ने कहा जिसे ये तो ठीक बात नहीं। तो उसने क्या किया, ये अपने मायका चली गई, अपने पति के पास, पिता के घर में चली गई और पिता से परामर्श करके, मैया से परामर्श करके, भाइयों से परामर्श करके, बाजार में एक, जिस बाजार में वो जाता था उसका पति, एक घर किराए पर ले और वहां पर ऐसे बन टन करके, सुंदर बन करके वहां पर बची और इसी की टोह में रहती, इसे बातचीत नहीं करती, वो आता तो इसको दूध काट देती। धीरे धीरे वो सबसे आसक्ति छोड़ करके इसी के पास, उसको पहचानता नहीं कि हमारी स्त्री है, और धीरे 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 अत्यंत इसको वशीभूत कर दिया। वशीभूत करने के बाद में तब इसको पीछे से बताया, जबकि एकदम उसके साथ में मन मिल गया, तब उसने बताया कि मैं वही तुम्हारी विवाहिता स्त्री हूं। इस तरह से उसको फंसा करके फिर ले गया। अब ये उसके लिए दोष है कि नहीं, वो वेश्या का रूप बनाया अपना, तो उसका बनाना ये दोष युक्त हुआ कि नहीं हुआ? वेश्या बनना तो दोष है, किंतु वेश्या अपने पति के लिए ही बन रही है, इसलिए वहां पर दोष आ। ये दूसरों के साथ में यदि होती पति को छोड़ करके, तब तो वो बहुत कुलंगारिणी थी, किंतु अपने पति को दुरुस्त करने के लिए ऐसा किया। ऐसे गोपियां यदि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनी होकर के भी विवाहिता स्त्री या अपनी स्वकिया होकर के भी कृष्ण को इस प्रकार से जैसा वो चाहते हैं हरास कर रहे हैं, दुर्बलता से मिल रहे हैं, ये दोष आ। किंतु दूसरे के प्रति इनका होता तो जरूर विशेषता। गोपियों के साथ में कृष्ण का नित्य दाम्पत्य संबंध है, जी गोस्वामी का है। दाम्पत्य किसको कहते हैं? अग्नि को साक्षी देकर समाज के सामने जब पति पत्नी का हाथ ग्रहण करता है, पानी ग्रहण करता है शास्त्रीय विधियों के साथ में, तो उसको कहते हैं पति और पत्नी, इसको कहते हैं दाम्पत्य भाव। कहते हैं ब्रह्म संहिता में ऐसा लिखा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी निज रूप तया कला भी, निज रूप तया कला भी, कला भी मैंने शक्ति भी, अपनी शक्ति कैसे कृष्ण जैसे सच्चिदानंद है, ये भी उनकी कला माने उनकी शक्ति है, उनकी दंपति जोड़ी है दोनों की। निज रूप तया का अर्थ मैंने किया है स्वदारत्व एवं, स्वदारत्वेन, दारत्वेन माने क्या, पत्नी, पत्नी के रूप में दारत्व में, दारा कहते हैं, दारा पत्नी जो विवाहित हो वेद विधि से दारत्व न तो प्रकट लीला होता। प्रकट लीला में जैसा हुआ तैसा नहीं, मैंने स्पष्ट कर देते हैं कहते हैं, किंतु अस्पष्ट मैंने सबके लिए नहीं, जो अनाधिकारी हैं उनके लिए पीछे ये बतलाए। तो प्रकट लीला में जैसे विवाह हुआ कहीं और ये समस्त गोपियां अपने घरों को छोड़ करके और कृष्ण बंसी के वादन के समय सबको छोड़ करके कृष्ण के पास में पहुंचे और कृष्ण कहते हैं अपने घर में जाओ अपने पत्नी की सेवा। इसलिए कहते हैं कि प्रकट लीला की तरह नहीं, अप्रकट लीला में नित्य उनका स्वदारत्व भाव है। पर दारत्व व्यवहारिणी की अर्थ वहां पर केवल माया प्रत्यय प्रत्ययित भाव, माया प्रत्ययित भाव, माया प्रत्ययित माने है नहीं किंतु माया के द्वारा ऐसा प्रत्यक्ष हो रहा है, उसी कहते हैं माया द्वारा प्रत्ययित भाव। है नहीं कुछ, लड़का मरा नहीं, नहीं यही पास में
चल रहा,
कुछ वर्ष पहले एक कलकत्ते से कोई बीसी राय या कौन आया था, वो दिखला रहा था जादू, तो वो ऐसा किया वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुपरिंटेंडेंट और पुलिस सबको बुलाया गया, बहुत सुंदर पंगो उंगो बनाया, उसमें बड़े बड़े लोहे के बॉक्स रखे थे और उसमें 10 ताले लगाए थे, उसने ताले वाले को खोल करके ऐसे उलाट करके रख दिया बक्से को और कहा जे देखो ये मेरा लड़का है और इसको मैं बक्से में करता हूं काट कर और देखो उसको बुलाऊंगा और देखो ये कैसे क्या, बस सबके सामने में एक कपड़ा के अंदर में उसको ढक दिया बच्चे को और एक बाहर से छुरा निकाला और उसके गले पर देने लगा। लोगों ने देखा जा रक्त इधर उधर हो रहा, लड़का आ कर रहा है ना? इसके बाद में गले को अलग कर दिया और शरीर को अलग और लेकर के दिखला दिया मुंड और रूंड और लेकर के बक्से में अपने हाथों से खून से लग और इसके बाद में एसपी को कहा जरा इस ताले को बंद कर देना, तो इतने बड़े बड़े लॉक डिस्ट्रिक्ट में आपने एक दूसरा ताला दे दिया और किसी एक नागरिक से कहा तुम एक ताला 4-5 ताले उसमें लगा दिए, इसके बाद में उसको भर दिया। इसके बाद में कहा अरे बेटे इधर आ जा, बेटे इधर आ जा, उसका नाम पकड़ करके कुछ नाम पकड़ते बेटे इधर आ जा, तो लड़का बहुत दूर से बोलता है पिताजी मैं आ गया पिताजी आ गया। लोगों ने देखा जो वही लड़का जिस साथ अलग आता था वहीं से बाहर से दौड़ करके और पिताजी के पास देखा, लोगों ने जिसे वो बक्से में बंद है और इधर
खुल के देखा बक्से में
खोल करके देखा तो उसमें है नहीं कुछ। तो यदि साधारण एक मदारी ऐसा कर सकता है तो कृष्ण जी की ये सब करना क्या है बात है, योग माया के प्रभाव से इसी को कहते हैं माया प्रत्ययित भाव। उसने कुछ किया नहीं, आंख बंद करके और कौशल हाथ पीस खाई उसने दिखलाई। इसी तरह से सब मदारी लोग ये सब काम करते हैं। तो गोपियों का नित्य दाम्पत्य भाव है, ब्रह्म संहिता में कहा गया आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी निज रूप तया फलाभि। तो यहाँ पर निज रूप तया मैंने बतलाया स्वदारत्वेन, अतः तो उनके साथ में दाम्पत्य अभिमान चीर काल है। कहाँ? वहां तो वहां से फिर आएंगे तो फिर अब विवाह की क्या जरूरत है दिखलाने की। जैसे किसी की शादी मथुरा में हुई और बॉम्बे किसी काम से गया तो फिर वहां उन लोगों की प्रतीति के लिए फिर वहां पर शादी करनी पड़ेगी, नहीं जरूरत नहीं, इसीलिए वहां पर नित्य उनका शादी है, इसलिए यहां पर आते हैं, यहां पर शादी की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रकट लीला में जैसा हुआ गोपियां कृष्ण के पास में गई अपने पति को छोड़ करके जैसा कहा गया, ये प्रकट लीला में थोड़ा सा ये दिखलाया गया, ये भी दिखलाया गया है माया के द्वारा भ्रम कराया गया, यथार्थ में विवाह शादी की छोड़ ऐसे ही चिन्मय रस प्रतिभाविता भी परदारत्व रूपे
लीला पोषण का,
कहते ये लीला का ये पोषण है। एक भाव ये भी एक दंपति रूप में सुख और एक इस रूप में पार्थिव भाव, कृष्ण गोपियों के साथ में दोनों भाव गोलोक में करते हैं नित्य उनका ये भाव, वहां पर नित्य सिद्ध स्वकीय भाव और यहां पर प्रकट काल के लिए दिखलाते हैं वो भी योग माया के प्रभाव से। क्यों? गीता में भी ऐसा बतलाया गया है, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं हमारा जन्म इत्यादि वो होता है
योग माया समाप्त
ना हम प्रकाश
सर्वस्व
योग माया, योग माया के द्वारा मैं अच्छा भी तरह करके सब लीलाएं को करता हूँ जिससे कि इसको कोई ज्ञान नहीं होता, किंतु हमारा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, दिव्य माने अलौकिक, इसको कोई समझ नहीं होता, वो समझते कि यहाँ पर जन्म हुआ ये लीलाएं थी, किंतु वो सब नित्य लीलाएं। परम लक्ष्य देव नित्य दाम्पत्य भिन्न अपर भावना, जब उनको ब्रह्म संहिता में परम लक्ष्मी कहा गया गोपियों को, कहाँ कहा गया? बेणु पड़ंतम
नहीं, कल्प वृक्ष
कल्प वृक्ष लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमान, ये कोटि कोटि लक्ष्मियां एक एक गोपियों की सेवा करती है, तो ये गोपी ये कोटि कोटि लक्ष्मियों की भी आराध्या है परम देवता ये के लिए, इसलिए उनका दाम्पत्य के अतिरिक्त और कोई भाव लक्ष्मी किस लिए कहते हैं जो विवाह सूत्र में सब समय बदली है, ये जब उनके द्वारा उपास्य हैं तो भी जरूर ऐसा होगा, इसलिए उनका नित्य दाम्पत्य है। इसलिए प्रापंचिक प्रकट लीला में गोपियों के पर दारत्व माया विजृंभित माने, माया विजृंभित माने माया का एक खिलवाड़ है, एक खिलवाड़ कर दिया भगवान नहीं दिखा, कृष्ण को मान नहीं लगा और जो महामाया ने दिखलाया ये बात ऐसे कृष्ण श्री कृष्ण गोपियों के पति, कृष्ण को गोपियों का पति कहा गया, गौतमीय तंत्र में कहा गया अनेक जन्म सिद्धानं गोपी नाम पतिरेव वा नंदनंदन इत्युक्त त्रैलोक का आनंद वर्धनम, गौतमीय तंत्र है प्रमाणिक ग्रंथ है, उसमें कहा अनेक जन्म सिद्धाना अनेक जन्मों में कठोर तपस्या करने के बाद में आराधना करने के बाद में जो गोपियां सिद्ध हुई उनके पति रेववा निश्चित रूप में उनके पति ही कृष्णचंद्र है, नंदनंदन उनके पति हैं इति उक्त त्रैलोक्य आनंद, जो कृष्ण त्रैलोक का आनंद वर्णन करते हैं उस कृष्ण में इनका पति भाव ही सर्वथा है। श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं 10:35:35 गोपीनां तत्पतिनां च सर्वेषां चैव देवीनां जो अंतश्चरति सो अध्यक्ष एष तृण देह भाव, जब राजपंच अध्याय समाप्त होता है तो अंतिम अध्याय में जी गोस्वामी कह रहे हैं उसमें लिखा सुखदेव गोस्वामी ने या बतलाया या परीक्षित महाराज जी ने तो बतलाया, क्या बतलाया? गोपी नाम तत्पति नाम सर्वेशां एवं च देवी नाम जो अंतश्चर की सो अध्यक्ष ए सकिन भाव, परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं गोपियां अर्थ में लौट सकते हैं, कितने दिन के बाद में लौटी? ब्रह्मा के एक दिव्य रात के बाद तक कोटि कोटि करोड़ों वर्षों तक यह रासलीला एक रात में कोटि कोटि रातें समाये और ये रात पूरी रात रासलीला इतने वर्षों के बाद में गोपियां घर में लौटी, उन पतियों ने आज बहुत दिनों के बाद आए हुए गोपियों का अनादर नहीं किया, उनको डांटा डपटा नहीं, उनको कोई कड़वे अपमान भी नहीं किए, उनको बड़े आदर के साथ में रखा, क्यों रखा? उसमें बतला रहे हैं, इसलिए कि जोग माया ने उनकी एक एक की प्रतिमूर्ति उनके पतियों के पास में इतने दिनों तक रखा, इसलिए उन लोगों ने समझा था कि ये हमारे पास ही में तो थी, कहीं गई नहीं। और दूसरी बात उसका उदाहरण देकर के बतला रहे हैं, गोपीनाथ वो जो गोपियां हैं तत्पतिनांच और उनके जो पति हैं और सर्वेशां विश्व के जितने भी स्त्री पुरुष पेड़ पौधे पक्षी कीट पतंग हैं जीवात्माएं हैं वो सर्वेशां च देहिनां, ये देहियों के भी जो अंतश्चरती जो अंतर में और बाहर में जो अध्यक्ष हैं जो पति हैं सप्रणम देह भाव उनके साथ में इनका विरोध कैसे होगा। जो अंतर चरने वाले जो अध्यक्ष हैं बाहरी शरीर के भी किरण देवा उनके शरीर से क्रीड़ा करते हैं उनके अंतर में रमते हैं, जो समस्त जीव प्राणी उनके पति और उनके सबके हैं उनके प्रति दुराचरण कैसे वो करेंगे। उन्होंने समझा कि से हम सब समय हमारे साथ में और उधर में कृष्ण के साथ में, इसलिए कृष्ण कौन है जो हमारे सर हमारे अंदर भी बाहर भी सर्वत्र कृष्ण क्रीड़ा कर, इसलिए वहां पर दोष कृष्ण के लिए दोष आरोप नहीं है, वो उनकी पत्नियां ही हैं, हम सभी जीव मात्र ही उनके पत्नी हैं, शक्ति हैं, शक्ति के अंश हम हैं, तटस्था शक्ति भगवान की एक पराशक्ति की एक आंशिक तुच्छ शक्ति, उससे हम परिणत हुए जीव, जीव मात्र ही आत्मा मात्र ही स्त्रीलिंग उनकी शक्ति जीव के लिए बतलाया गया। अपरा को बतलाया ये आठ अंश वाली ये जो है ये अपरा अहंकार अपरायण इतस्तु अन्य इतस्तु अन्य अन्य एक परा प्रकृति है वो जीव प्रकृति, इसलिए जितने भी ये जीवात्माएं हैं कोई पुरुष रूप में दिखता है स्त्री रूप में दिखता है सब उनकी सब, इसलिए सबके पति वही कृष्ण ही है, इसलिए गोपियों का भी पति वही है। श्री गोपाल तापनी में भी कृष्ण को इनका स्वामी बतलाया गया, स्वामी माने पति होता है जीव गोस्वामी का पति होता है, इसलिए गोपाल तापनी में भी ऐसा कहा गया सौ वो स्वामी भवती, कृष्ण जो गोपाल है वो सबके स्वामी हैं, इन गोपियों के भी स्वामी भवतु भवत माने ये पति होते हैं। लक्ष्मी गण के पार्थियत्व लक्ष्मी में कभी भी पार्थत्व संभव नहीं, लक्ष्मी जो हैं नारद के प्रति कभी भी उनका पार्थिय भाव नहीं कभी संभव, उसी तरह से श्री कृष्ण बल्लभागण लक्ष्मी हैं, ब्रह्म संहिता में लक्ष्मी सहस्त्र शत ब्रह्म ये तो पहले बतला दिया। पांडव शब्द जिस प्रकार से पांडव माने क्या होता है अर्जुन प्रभृति होता है ना पांडव प्रचुर प्रयोग हेतु जन्म पांडव बोल ले कौरव गण का भी बोल पांडव गण से कौरव और पांडव दोनों का बोध कौरव पांडव लोग लड़ रहे माने कौरव और पांडव दोनों, इसी तरह से यहां पर लक्ष्मी शब्द के प्रयोग में गोपियों का भी बोध गोपियां कृष्ण से के पास में क्रीड़ा कर रही हैं, किंतु हैं लक्ष्मी इसलिए इसका प्रयोग ऐसा कर दिया गया है, किंतु लक्ष्मी के प्रयोग के द्वारा ही समझो जो पति का यहां पर प्रयोग अपने आप हो गया, इसलिए गोपियों का पर्व का पर यह भाव असंभव। कृष्ण कार्तिक श्रीमती को अखिल लोक साक्षी बोलिया संबोधन कर कृष्ण ने श्रीमती राधिका जी को अखिल लोक साक्षी कहा है, अखिल लोक साक्षी में और अखिल लोकों के लिए आप साक्षी क्यों जोग माया है इसलिए साक्षी स्वरूप में। प्रकट लीला में उपपतिवत प्रतीयमान होना ही ग्रंथ में कृष्ण को उपपतिवत वर्णन हुआ, इसलिए प्रकट लीला में उपपति जैसा कृष्ण में के प्रति उनका भाव देखा जाता है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रकट लीला के अनुसार ही ऐसा वर्णन किया है। बहु बार अनता प्रचन्नता कमता एवं परस्पर परम दुर्लभता रति संबंध श्रेष्ठ बुनिया जी रथ शास्त्र विहित लौकिक रस शास्त्र संबंध है। कहते हैं कि ये सब जो अलंकार शास्त्रों में ये सब का जो वर्णन किया गया है ये लौकिक संबंध में, वहां नहीं, वहां कृष्ण अपने आप सुंदर है, गोपियां आप सुंदर हैं, उनका मिलन चलन सब कुछ बड़ा महत्व, वहां के लिए ये सब का जरूरत नहीं। यदि यही कहो जब परस्पर मिल नहीं रहे तो ये दिखला रहे हैं रुक्मिणी सत्यभामा से तो सब समय मिलते हैं, उनकी प्रेम में कमी होती है। यदि रुक्मिणी सत्यभामा वहां पर कोई भी निवारण नहीं, जब तब वो मिल सकते हैं, कोई भी वहां पर गुरुजनों का भय नहीं, उनके लिए समस्त शास्त्र ही आदेश दे रहे हैं, वो सब समय रुक्मिणी के घर में बैठे हुए हैं, सभा से आते हैं रुक्मिणी के घर में, सत्यभामा के घर में, और बड़े प्रेम के साथ में रहते हैं, उनका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, कभी मान कभी कुछ कभी कुछ ये भी देखा जाता है, उससे उत्तरोत्तर मान उनका प्रेम बढ़ता है, तो यहां पर क्यों नहीं बढ़ सकता है प्रेम। इसलिए ये सब दूसरे शास्त्रों के लिए आया, समझ में तू वो पीछे की बात जीव गोस्वामी जो करें उसको समझ करें। दुर्लभता एक दोनों में मिलने जा गुरुजनों का भय, कोई चीज बाजार में है जैसे कि परवल, अभी परवल क्या दर है, अभी 15-16 रुपया है, जिस समय की बड़ा मुश्किल से मिलता है, कलकत्ते के बाजार से यहां पर आता है, आने जाने का खर्चा वहां पर 2 रुपया किलो और वही चीज यहां पर करके 50 रुपया की, आने जाने में कुछ सड़ गया कुछ ये हो गया वहां से ले आया उसमें समय लगा बेच रहा है तो वहां पर 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया 40 रुपया किलो, किंतु जब वहां पर अधिक हो जाएगा और चारों तरफ में भी होने लग जाएगा तो वो घट करके वो 8 आना भी बिक सकता है, जब सहज रूप में हो जाएगा। अभी यहां पर पानी मान ले कि पानी यहां पर चारों तरफ में खारी रहे और मीठा पानी नहीं मिलता तो मीठे पानी का मूल्य कितना एक बाल्टी का हो जाएगा, बहुत खुश, और जब सहज रूप में मिलता है तो उसका कोई मूल्य नहीं। तो इसी प्रकार से दोनों का मिलना यदि बड़ा भारी मुश्किल है राधा कृष्ण का या गोपियों का कृष्ण के साथ, उसके लिए दोनों उसके लिए बहुत प्राण से ही चाहते हैं कि कैसे उसमें प्रेम बढ़ता है, इसलिए प्रकट लीला में कुछ दिखाया गया, किंतु कृष्ण के लिए गोपियों के लिए ये बात ठीक नहीं, यह है केवल लौकिक वो जो कुछ उदाहरण दिया, वहां पर तो इतने सुंदर परस्पर हैं, स्वाभाविक प्रीति है जो वहां पर इन सब चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं, जैसे उदाहरण दिया रुक्मिणी सत्यभामा का कृष्ण का, सब समय मिलन हो रहा है तो भी आनंद बढ़ रहा है, सखाओं से तो सब समय मिलते हैं उनका प्रेम कम जाता है या बढ़ता रहता है, यशोदा मैया सब समय कृष्ण को देखती है, उनके लिए कृष्ण को देखना बाधा है कहीं तो उनका प्रेम क्यों नहीं घट जाता बार बार मिलने से, अजय नहीं ये कर रहे हैं हमारे गुरु से। इसलिए लौकिक रस शास्त्र में ही उसके लिए वो सब उपनाएं, अप्राकृत कृष्ण रस के लिए ये सब चीजें नहीं। समर्थानति में निवारण इत्यादि ना था कर सकते हो श्रृंगार से यथेष्ट, इसलिए इस अप्राकृत कृष्ण रस में ये सब चीजें भी ना रहे कोई भी बात नहीं, वहां पर अपने आप प्रेम ही इतना अधिक है कि प्रेम कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है, यह समर्थक इन सब की जरूरत नहीं है। इसलिए थिथर गल्प संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय में वो लोग विप्रलम्ब भाव मानते हुए एकदम विप्रलम्ब सब समय मिलन की वो भावना है। समर्थारथी में मदनक्ष इत्यादि भाव पराकाष्ठा रूप में वहां पर परिलक्षित होता है, इसलिए वहां पर उपपत्ति भाव की कोई भी आवश्यकता नहीं है प्रकट क्रिया में, इसलिए उसको माया विजेंद्रित भी कहा जाए। उपसंहार में कहते हैं स्वेच्छया लिखित, हमने उज्जल की रोचन
लोचन रोचनी
लोचन रोचनी नामक टीका जो हमने की उसमें किंचित स्वेच्छया लिखितम, स्वेच्छया लिखितम किंचित, हमने कुछ अपनी इच्छा से लिखा है, अपने से इच्छा से जो लिखेंगे वो यथार्थ तत्व को लिखेंगे, और किंचित अत्र परेच्छया, और किंचित लिखा है हमने कुछ परेच्छया, परेच्छया माने अनाधिकारियों के लिए उनके अधिकार के अनुसार में जानबूझ करके हमने ऐसा कुछ लिखा, ऐसे कुछ लिखा ऐसे। यत् पूर्वापरम संबंधम तत् पूर्वम अपरम परम, पूर्वापर संबंध युक्त जो अंश है जो लिखा हमने दूसरों की इच्छा से उसको सत्य पूरा मत मानना, आंशिक सत्य मानना। हमने जो पूर्व और अपर माने पीछे दोनों को संबंध युक्त ठीक कर करके अपने विचार से जो लिखा है उसी को सत्य माना, पूर्वापर संबंध युक्त अंश ही अपनी इच्छा से स्वेच्छा कर्म से लिखा है, और इस रूप संबंध शून्य होने पर परीक्षा के द्वारा लिखा, दूसरों की इच्छा के लिए दूसरों के उपकार के लिए हमने ऐसा लिखा। क्यों लिखा कि अनाधिकारी लोगों ने कहा श्रीमद् भागवत में ये इस प्रकार का भाव क्यों आएगा, उत्पत्ति का भाव ये तो आना नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं आना चाहिए, क्यों अनाधिकारी। और उनसे दूसरे लोगों ने कहा अरे श्रीमद् भागवत में सर्वत्र श्लोकों में इसका वर्णन है, तो कहने हाँ ऐसा है, उनको दुमुखा नहीं कहा जाएगा, क्यों इसलिए जो लोग अनाधिकारी हैं उन लोगों के लिए कहा गया जे ऐसा नहीं हो सकता, कृष्ण किसी को पत्नी जीव मात्र के ही वो पत्नी, हमारे भी पति हैं, दूसरों के भी पति हैं, सबके पति। और वहां पर जो किस प्रकार के अधिकारी थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि जो बैठे थे उनके लिए कहा क्या भागवत में जो लिखा है वही सत्य है और बाकी सब माया भी थी, और उन लोगों के लिए कहा जो वो जो कहते हैं वो माया विजंबित है और बाकी ये ठीक है, किंतु दोनों ही अपने अपने स्थान पर ठीक, उनका अपना जो भाव है वही शुद्ध। अब उनका अपना शुद्ध क्या भाव है, अब अपने तुम्हें नहीं कहा कि सुना चक्रवर्ती ठाकुर जी शुद्ध है, आप लोग थोड़ा सा इसमें से जो ग्रहण हो सके उसको ग्रहण, इसलिए कि आजकल ये सब विचार प्रज में इधर उधर सब चल रहे हैं, स्वकीय भाव ही श्रेष्ठ है, इसलिए मैं ये थोड़ा बहुत पहले एक सभा में अभी उनको बुलाया गया था मैं नहीं जा सका, तो वहां पर थोड़ा सा
राधा दामोदर
था बिंदा
राधा दामोदर,
इसलिए मेरी इच्छा थी जैसे कभी जब इस सुजोग आएगा तो थोड़ा सा हम आलोचना, तो हम लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहे थे उसमें प्रसंग आया, इसलिए आप लोगों के भी यदि कहीं ऐसी कोई बात हो तो तुम लोग उसमें भ्रम में मत पड़ जाना, इसलिए ये सब चीजों को बतला रहा। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती था इनकी टीका का नाम है क्या
इसे
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की उज्ज्वल दुर्गम संग बने क्या है तो उसमें विचार कर रहे हैं स्वकीय के पक्ष में व्याख्या जीवपाद का भी प्रयोग नहीं हो सकता,
जी गोस्वामी ने जो बतलाया है कि श्रीमद् भागवत का जो राजपंचा अध्याय इत्यादि का जो प्रसंग है, और यहां पर हमारे रूप गोस्वामी जी इस श्लोक को जो कह रहे हैं, इसमें जीव गोस्वामी जी ने जो स्वक्रिया का पक्ष लेकर के सब लोगों के लिए बतलाया है जे कृष्ण से ही गोपियों का विवाह हुआ था और यही ठीक है। ये जो कहा ये कभी भी जीव गोस्वामी की आंतरिक व्याख्या नहीं हो सकती। कौन कह रहा है?
चक्रवर्ती ठाकुर।
क्योंकि ये रूपानुग में सबसे श्रेष्ठ और प्रथम है। रूपानुग किसको कहते हैं? जो रूप गोस्वामी का अनुग है। अनुग अनु माने पीछे पीछे, पीछे पीछे चलने वाला, जो उनकी भावनाओं के अनुसार चलने वाला है, वो कभी भी रूप गोस्वामी के इन विचारों का अन्यथा नहीं कर सकता। इसलिए जीव गोस्वामी की ये विचारधारा अपनी नहीं है, ये परीक्षा है अभी का, क्योंकि जीव गोस्वामी ने स्वयं ही परीक्षा लिखा है। इसलिए जीव गोस्वामी ने अपनी अपनी लेखनी के द्वारा इन्होंने किंचित लिखितम किंचित लिखितम परीक्षा, इसलिए ये परीक्षा के द्वारा उन्होंने ऐसा लिखा। भिन्न रुचि लोगों के लिए यह दुर्गे अचिंत लीला निर्दोष प्रतिपन्न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। अर्थात जो लोग उन्हें भजन नहीं किया कभी, इतने ऊंचे उस स्थिर पर रह करके और वैष्णव का संग नहीं किया, भगवत भक्ति का तत्व नहीं जानते हैं, ऐसे निर्बोध लोगों के लिए ही इस अचिंत लीला को निर्दोषत्व साबित करने के लिए कि ये दोष लीला में कहीं भी दोष नहीं है, ऐसा उन्होंने। क्योंकि उन्हों की दृष्टि में ये लीला दोषपूर्ण है, इसलिए ऐसा समझ करके ही स्वकीय पक्ष में ही इन्होंने श्रीमद् भागवत में भी बहुत से श्लोकों का और उज्ज्वल इन्होंने मूर्ति से श्लोकों का इस तरह से व्याख्या की। श्रीमद् भागवत में भी बहुत से श्लोकों की व्याख्या उन्होंने इसी प्रकार से की। श्रीमद् महाप्रभु चरणा जीवी चरणों के जो अनुगमन करने वाले और उन्हीं को प्राणिमान समझने वाले अंतरंग भक्तों के लिए इस प्रकार से व्याख्या युक्ति युक्त नहीं हो सकता। सर्व दामोदर के लिए, राय रामानंद के लिए, सनातन प्रभु के लिए, रूप गोस्वामी के लिए और उस समय के सर्व गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी थे, भूगर्भ गोस्वामी थे, इन लोगों के लिए कभी भी संभव नहीं। नरहरि सरकार थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, कवि कर्णपुर थे, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े विद्वान महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग भक्त हैं वो कभी भी ऐसा नहीं। अब वहां से आरंभ कर औपपत्य श्रीमद भागवत का श्लोक में औपपत्य अधर्म स्पर्शी और नरक जनक है, यहां प्राकृत नायक के पक्ष में है, किंतु धर्माधर्म नियामक धर्म और धर्म का नियामक चूड़ामणिन्द्र श्री कृष्ण की वो आशंका में कहा, कृष्ण वो आशंका कहा, साधारण ये तो छोड़ दो, साधारण रूप में महाभारत का युद्ध हो रहा है, कर्ण ने महाराज युधिष्ठिर का अपमान किया, उन्होंने कौंती के निकट में प्रतिज्ञाबद्ध उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन को मारने के अतिरिक्त और चार भाइयों का मैं वध नहीं करूंगा, अपमान कर लूंगा किंतु वध नहीं कर सकता, वध करूंगा तो
अर्जुन
जिससे कि मैं तुम्हारा या तो मैं ही तुम्हारा पुत्र रहूं या
अर्जुन
पांचों हम सब समय रहे, मैं मर गया तो अर्जुन और अर्जुन मर गया तो तुम्हारा
मैं
तृतीय पुत्र मैं रहूं, इसलिए मारूंगा। एक दिन युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को कहीं इधर उधर भटका दिया और रह गए ये लोग, बस युद्ध में महाराज युधिष्ठिर को अपने वो जो होता है धनुष धनुष से फंदा लेकर के उनके गले में डाल,
धनुष की रस्सी होती है उपाधि लेकर के उनके गले में देकर को खींच लिया। यही इसी बल पर लड़ने चले हो जो करके मर जाना चाहिए। अर्जुन तुम्हारी कहां कहां रक्षा करे? आज अर्जुन को बुला लो, जाओ तुमको आज छोड़ देता हूं, फिर हमारे सामने कभी मत आना। जब तुम मुझे देखना उधर में भाग करके चला जाऊंगा। ऐसा अपमानित किया और लेकर के छोड़ जाओ, आज छोड़, प्राण की भिक्षा दे रहा हूं बस छोड़। उन्होंने सोचा कि आज मर जाना अच्छा है, मर जाना ही अच्छा। ऐसा घोर अपमान हमारा जीवन में कभी एकदम क्लांत। और उन्होंने आदेश दिया उसको अपने साथी को, ये रथ ले चलो हमारे शिविर, उनको लेकर के शिविर पलंग पर ले गए। वही दृश्य सब समय आ रहा है। कर्ण ने उनको इस प्रकार से घोर और इस तरह की बातें, बाण से बेद करके मार देता कोई बात नहीं, आज उसके बाण
बाक विवान चुभ रहा है सरा
सोचा। बड़े दुखी अर्जुन उस समय में चारों तरफ में घूम करके देख रहे हैं कि आज हमारे युधिष्ठिर कहां है। सो खोजने लगे, आज कर्ण ने तो बड़ा विकर्ण दिखलाया, कहीं हमारे भाई को मार न दिया हो। पीछे से पता लगा जिसे वो कुछ आहत होकर के अपने सीने में लौट गए, बस वहां पर कृष्ण को लेकर के पहुंच गए। उनको देखा वहां पर पहुंचे तो प्रसन्न मुद्रा से युधिष्ठिर महाराज उठ करके बोले, भाई तुम्हारा कल्याण, तुमने कर्ण का विनाश कर दिया ना, मार करके आए तो उन्होंने सोचा कि हमारे भाई का अपमान किया इसलिए कर्ण को मार करके तब ही आए। और तुमने कहा नहीं तो मैंने तो कर्ण को मारा नहीं, तो बिना मारे ही चला आया तू। एक बात करो, अभी तुम अपना गांडीव उनको दे दो और मैं अभी जाता हूं। तुम ऐसे ही जड़े निकले, तुमने युद्ध नहीं किया और हमारा तुम्हारा भाई हमको ऐसा अपमान किया, तुमने मारा नहीं और ऐसे ही चले आए। सुनते ही अब कहां आनंद और कहां एकदम रोष से भर गए, गांडीव फेंकने की अच्छा बस उठा लेता जब मैं अभी मारूंगा युद्ध जो कृष्ण के काज हुई तो बड़ी भारी बात मुश्किल। ये यदि युधिष्ठिर को मार देते हैं तब तो बड़ा बड़ी मुश्किल हो जाएगा, तब तो महाभारत युद्ध हो गया। और उन्होंने प्रत्येक मैं जरूर इसको मारूंगा, इनको मारूंगा। जब उन्होंने अपमान किया तो